بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خداوند منان آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خداوند متعال کے لطف و کرم سے اس سال ماہ رمضان میں گزشتہ سال کی طرح قرآن مجید کی ایک سورت کا انتخاب کیا ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال نے توفیق دی تو اس سورت کی خدمت میں رہیں گے اور اس بہانے سے اپنے آپ کو قرآن مجید کے قریب سے قریب تر لے کر آئیں گے. اگر اس ماہ مبارک رمضان سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایک چھوٹا سا ہمارا مباحثہ تھا اور بعض دوستان کا اصرار بھی تھا کہ وہی سلسلہ جو ہے چل رہا ہے اسی کو آگے چلائیں, لیکن خود میری اپنی خواہش یہ تھی کہ جیسے سال گزشتہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کے ایک سورت کا انتخاب کیا, پھر اس سورت کے ذیل میں تقریباً ماہ مبارک رمضان میں مختلف گزارشات آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہی اور برحال اس طریقے سے آہستہ آہستہ قرآن مجید کی خدمت میں وارد ہونے اور قرآن کی خدمت میں آنے کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ تلاش کیا جا رہا تھا. کوشش یہ تھی کہ ہم قرآن کے مفاہیم پر, قرآن کے بیان کردہ معارف پر توجہ کریں اور اپنے آپ کو بالآخرے قرآن مجید کے قریب لے کر آئیں, لہذا کسی ایک سورت کا انتخاب بھی کیا تھا. اس سال بھی میری یہی خواہش ہے کہ ایک سورت کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اسی سورت کے ذیل میں مختلف عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوں اور آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے قریب کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بندہ حقیر کی روش بھی یہی ہے کہ جب بھی کسی آیت کو یا کسی سورت کو انتخاب کرتے ہیں تو پھر اس آیت اور سورت کے ذیل میں مختلف نکات, مختلف باتوں کو پیش کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ اہم جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری گفتگو اس طریقے سے ہو کہ اپنے آپ کو واقعاً ہم آہستہ آہستہ قرآن کے قریب لے کر جائیں. حقیقت ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر انسان اس کے ساتھ قربت بڑھائے, اس کے قریب ہو, تو پھر انسان کبھی بھی اس سے دور نہیں ہو سکتا. اگر انسان نے قرآن کی قربت کا مزہ چکھ لیا, اگر اسے معلوم ہو گیا کہ قرآن کی قربت میں کیا لذت ہے, تو پھر کبھی بھی انسان قرآن سے دور نہیں ہو سکتا. اور واقعاً وہ جو معصوم کا جملہ بھی ہے کہ اگر مجھے دنیا کے کسی کونے میں تنہا چھوڑ دیا جائے اور میرے پاس فقط قرآن مجید ہو تو میں وحشت کا احساس نہیں کروں گا, یہ واقعاً حقیقت ہے. یہ وہی انسان بول سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو قرآن کے بالکل قریب کر لیا ہو. جو انسان قرآن کی قربت کی لذت سے آشنا ہے वो कुरान से दूर नहीं हो सकता। कुरान वाकई ऐसी किताब है, वाकई कलाम खुदा में वो लज्जत पोशीदा है कि अगर इंसान उस लज्जत को छू ले, उस लज्जत का मजा चख ले, तो फिर इंसान कुरान से दूर नहीं रह सकता। यही कोशिश होती है हमारी कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कुरान के करीब करें। और कुरान मजीद शुरू से लेकर आखिर तक इस दीद के साथ देखें कि ये इब्तिदाए बाय बिस्मिल्लाह से लेकर आखरे वन्नास तक ये पूरे का पूरा कुरान खुद इंसान की दास्तान है। चंद दिन पहले किसी एक दोस्त ने यहाँ पर सवाल दिया था ना कि कुरान की बुनियादी थीम क्या है। मुख्तलिफ जवाबात दिए जा सकते हैं ना। मेरा दिल कहता है कि मैं ये कहूं कि कुरान मजीद का बुनियादी मौजू इब्तिदा से लेकर आखिर तक खुद इंसान है, खुद आप है, खुद मैं हूं। इस दीद के साथ कुरान मजीद की तरफ जाए। कुरान मजीद को एक अजनबी कलाम महसूस न करें, कुरान मजीद को एक जुदागाना दास्तान तसव्वुर न करें, बल्कि कुरान की खिदमत में इस उन्वान से जाए कि कुरान मेरी दास्तान, कुरान मेरे वजूद की शर्ह कर रहा है, खुद मेरी तौजीह दे रहा है, मेरी वजाहत कर रहा है। कुरान इंसान के वजूद के मुख्तलिफ शुऊनात का किस्सा है। एक एक जगह पर अगर आप जाएं, तअम्मुल करें, देखें, आपको यही मिलेगा। इसीलिए बाज़ आले मारिफत कहते हैं कि कुरान मजीद को इस तरीके से आप तिलावत करें, इस तरीके से पढ़ें जैसे कि गोया कि आप पर नाजिल हो रहा है। यानी जो जो एहसास उन आयात के अंदर बयान किया जा रहा है, आप कोशिश करें अपने आप को उसी एहसास के अंदर लेकर जाए, फिर देखें कुरान के साथ कुर्बत होती है या नहीं, फिर देखें वाकई कुरान के साथ कल भी रिश्ता कायम होता है या नहीं होता। जरूरत इस अम्र की है। अगर हम चाहते हैं कि कुरान मजीद से लज्जत हासिल करें, अगर हम चाहते हैं कि वाकई कुरान मजीद की कुर्बत का मजा चखें, तो फिर हमें अपना दिल कुरान के हवाले करना होगा। ये कब होगा? कब मैं अपने कल्ब को कुरान के हवाले कर सकता हूँ? ये तभी हो सकता है कि जब कुरान मजीद के अंदर जो सहने, जो मनाजिर बयान हो रहे हैं, मैं अपने आप को उन सहनों और मंजरों के अंदर लेकर जाऊँ। और वाकई इसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर जो ये आप मुख्तलिफ किस्से भी देखते हैं, मुख्तलिफ दास्तानें भी देखते हैं, इन किस्सों और दास्तानों को बेउनवाने तारीख नहीं बयान किया गया। ये बहुत बड़ा इश्तबा है कि आप समझें कि कुरान मजीद के अंदर जितने भी किस्से नकल हुए हैं कि 4,500 आयतों पर मुश्तमिल है, तकरीबन आयात 4,500 आयात हो जाती हैं, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा आयात कहें कि जिनके अंदर फकत अंबिया का किस्सा बयान किया गया। तो इसका क्या मकसद है कि कुरान मजीद कोई तारीख की किताब है, कोई दास्तान की किताब है कि बैठकर आपको दास्तानें सुनानी है? इस तरीके से तो नहीं है। इसका बेहतरीन शायद यह कि अगर कुरान मजीद किताब दास्तान और किताब तारीख हो, तो किताब दास्तान और किताब तारीख में तो इस तरीके से बयान करते हैं कि फला आदमी फला सन में पैदा हुआ, फिर ये हालात हुए, जाके फला तारीख को मर जाता है। किताब दास्तान तो ऐसे होती है ना, लेकिन कुरान मजीद में आपको ये दास्तान इस तरीके से नहीं है, किसी नबी की दास्तान का कोई हिस्सा किसी आयत के अंदर मिलेगा, किसी नबी की दास्तान का कोई हिस्सा किसी जगह पर मिलेगा, और उसके अंदर किसी जगह पर आपको ये नहीं बताया जाता कि फला तारीख में फला नबी पैदा हुए, फला तारीख में फला नबी मसलन इस दुनिया से चले गए या शहीद हो गए, फला तारीख को इस तरीके से फला नबी ने किया, ना 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 इस तरीके से नहीं है। मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे किस्सों की तरफ इशारा, कभी कभार कुरान मजीद उसी एक किस्से को मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ अंदाज में बयान करता है, मुख्तलिफ अल्फाज में बयान करता है। ये सारा क्यों है? ये सब कुछ बता रहा है कि ये कुरान आम दास्तान और आम तारीख की तरह आपको तारीख और दास्तान नहीं बयान करना चाह रहा, कुरान मजीद कुछ और बताना चाह रहा है। इन अंबिया के किस्सों को जो नकल किया है ये बेउनवान किस्सा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, जो हम अपने ऊपर भी जुल्म करते हैं और तारीख के अंदर भी हुआ कि हम इन किस्सों की तारीखी जुज़वी हैसियतों में अपने आप को इतना फंसा देते हैं कि जिन नुकात को कुरान इन किस्सों के अंदर बयान करना चाहता है वो नुकात हमसे फौत हो जाते हैं। हम लोग इस बात में झगड़ते रहते हैं कि हजरत आदम का निकाह किसने पढ़ा, हम लोग इस बात में रह जाते हैं कि हजरत मूसा का कद कितना था, हम लोग इस बात के अंदर रह जाते हैं कि फला नबी के बेटे कितने थे, बेटी कितनी आदि, कितनी उम्र थी, यानी इन जुज़वी चीज़ों में हम अपने आप को फंसा देते हैं। लेकिन कुरान मजीद जिस असल नुक्ते को बयान करता है इन किस्सों के अंदर, इन दास्तानों के अंदर, जिन असल नुकात की तरफ कुरान ने हमें मुतवज्जे किया है, वो नुकात हमसे निकल जाते हैं। ये हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा आलमिया है। हम लोग जो अंबिया के दास्तानों की तरफ जाते हैं तो उनकी इन जिंदगी के जुज़वी हिस्सों में अपने आप को खो देते हैं, वहां पर हम लोग फंस जाते हैं। दरअसल कि वो जो जुज़वी चीजें हैं वो इतनी ज्यादा अहमियत की हामिल नहीं है, यानी हद अकल इस वक्त मेरे लिए इतनी ज्यादा अहमियत की हामिल नहीं है। अगर उस तरीके से अहमियत की हामिल होती तो कुरान मजीद जरूर उनको बयान करता, लेकिन कुरान मजीद आपको किस्सा तो नहीं सुनाना चाह रहा। अगर किस्सा सुनाना होता तो 1,24,000 अंबिया तो और भी है ना, रसूलुल्लाह को छोड़ के एक नबी छोड़ के 1,24,000 दूसरे अंबिया भी है, उन सब के आपको किस्से बयान किए गए हैं ना। कुरान मजीद ने ये जो 4,500 के करीब आयात के अंदर अंबिया का किस्सा बयान किया है ये सिर्फ दास्तान नहीं है। इस उन्वान से आप इनके पीछे न लगे, बल्कि जो जो हिस्सा जिस नबी का नकल कर रहा है दर हकीकत उस किस्से के अंदर इंसान के वजूद की कहानी का कोई ना कोई बाब खोला जा रहा है। ये आपने देखा है ना, मकाम मौजम रहबरी ने एक खूबसूरत किताब उनकी आई है, इंसान 250 साले, 250 साल इंसान, उन्होंने आइम्मे अतहार की सीरत लिखी है, उस सीरत को पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक, ठीक है, इस पूरी सीरत को इन्होंने इस तरीके से लिखा है कि दर हकीकत एक इंसान है कि जिसकी उम्र 250 साल है, फर्ज करें गैबते सुगरा के जमाने तक, कि फिर कुबरा शुरू हो जाती है वो अलहदा। क्योंकि ये आइम्मा की सीरत को आप इसी उन्वान से देखें कि एक ही इंसान है, जिंदगी के मुख्तलिफ नशीबो फराज के अंदर, जिंदगी के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव के अंदर उसका रवैया क्या है, वो किस तरीके से जिंदगी बसर करता है, वो कैसे गुजारता है, तो ये एक ही इंसान है जो इस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। और ये आपको जो नशीबो फराज नजर आ रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत इख्तलाफ नजर आ रहा है तो ये दर हकीकत उन हालात की वजह से है कि कि एक ही इंसान मुख्तलिफ हालात के अंदर मुख्तलिफ तरीके से इकदाम करता है। खूब इस 250 साल इंसान में इस नुक्ते को बयान किया गया। लेकिन कुरान मजीद की दीद के एतबार से देखें ना, हजरत आदम से लेकर हजरत खातम तक जितने भी अंबिया हैं, अगर इसी दीद के एतबार से देखें आपको भी ये हकीकत में एक ही इंसान की दास्तान लगेगी। असलन एक ही इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ शुऊनात, मुख्तलिफ हालात, इन मुख्तलिफ शुऊनात और मुख्तलिफ हालात को बयान किया जा रहा है। हजरत आदम के अंदर इंसान की जिंदगी के किसी एक बाब को खोला जा रहा है, हजरत नूह की जिंदगी के अंदर इंसान की जिंदगी के किसी एक बाब को खोला जा रहा है, इसी तरीके से हजरत इब्राहिम की जिंदगी के अंदर इंसान की जिंदगी का कोई एक बाब खोला जा रहा है, इसी तरीके से हजरत यूसुफ की जिंदगी में इंसान की जिंदगी का कोई एक बाब खोला जा रहा है, इसी तरीके से हजरत याकूब, इसी तरीके से हजरत मूसा ता आखिर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जितने भी अंबिया के किस्से बयान हो रहे हैं, ये आपको तारीख नहीं बताई जा रही, आपको दास्तान नहीं बयान किया जा रहा, बल्कि इन अंबिया के किस्सों के अंदर या ये जो मुख्तलिफ किस्से बयान किए जा रहे हैं, इन तमाम किस्सों के अंदर खुद आपको आपसे आशना किया जा रहा है। ये इंसान की दास्तान है, ये एक ही इंसान है आदम से लेकर खातम तक। हर किरदार इंसान के वजूद की किसी न किसी सिफत को बयान करता है, हर किरदार इंसान की जिंदगी के किसी न किसी शान को बयान करता है, हर किरदार इंसान की जिंदगी के किसी न किसी मरहले को बयान करता है, हर किरदार इंसान की जिंदगी के किसी न किसी हिस्से को बयान करता है। खूब दास्तानें ऐसे हैं, कुरान इसी तरीके से है। इस एतबार से अगर आप कुरान की खिदमत में जाएं कि हर किस्से के अंदर खुद आप अपने आप को ढूंढ सकते हैं, हर किस्से के अंदर, हर दास्तान के अंदर आपको कहीं ना कहीं अपना किरदार नजर आएगा। खूब इस उन्वान से अगर कुरान की खिदमत में आप गए तो वाकयन फिर कुरान आपको पुरानी किताब नहीं लगेगी, कुरान नऊज़ु बिल्ला ये नहीं लगेगा कि गुज़श्ता अंबिया के बस दास्तान और किस्से बयान करके छोड़ दिया है। ना ना, आपको महसूस होगा कि कुरान खुद आपकी आपको दास्तान सुना रहा है, खुद आपकी दास्तान है, खुद आपका किस्सा है कि जिस किस्से को और दास्तान को इस कुरान मजीद के अंदर पढ़ रहे हैं। खूब इस एहसास के साथ आप कुरान मजीद में जाएं, इस एहसास के साथ जब आप कुरान मजीद की खिदमत में आएंगे तो इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि कितनी लज्जत है। आप महसूस करेंगे, अपने आप को वहां पर देखेंगे। बहरहाल इसमें मैं ज्यादा नहीं रुकता, कहने का मकसद यह कि कुरान मजीद को आप इसी उन्वान से देखें। मरहूम शेख इशराक शहाबुद्दीन सोहरावर्दी फैलसूफ मकतूल का बहुत प्यारा जुमला है, उसे नकल करते हैं, कहते हैं कि वो कहा करते थे कि जब भी आप कुरान पढ़ें तो इस एहसास के साथ कुरान की तिलावत करें कि गोया कुरान मजीद तुम पर नाजिल हो रहा है। वाकई ऐसे इस एहसास के साथ अगर कुरान की खिदमत में जाए तो फिर देखें कि कुरान कितनी लज्जत देता है। क्यों हम तअब्बुदन, ऐसे होता है ना, यानी सवाब की खातिर, बड़ों के कहने की खातिर, इस नियत के साथ तो हम चले जाते हैं कुरान मजीद को पढ़ने के लिए, लेकिन हम में से वहाँ के अन वो बहुत कम अफराद हैं, बहुत थोड़े अफराद हैं जो कुरान मजीद की खिदमत में जाएं और वाकयन कुरान को पढ़ने से लज्जत हासिल करते हों। बहुत कम अफराद हैं ऐसे। वाकयन ऐसे क्यों होता है कि हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन उस तरीके से जैसे लज्जत हासिल करने का हक है उस तरीके से हमको लज्जत नहीं मिलती? क्यों, कहां पर इश्तबा कर रहे हैं, कहां पर गलती कर रहे हैं? खूब इश्तबा यही है कि हम कुरान को तो पढ़ रहे हैं लेकिन अपना दिल कुरान के हवाले नहीं कर रहे। हम कुरान मजीद को तो पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत तो करते हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि कुरान मजीद के साथ कैसे इर्तबात में बरकरार करो। अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि मैंने कुरान के साथ किस तरीके से इर्तबात बात करना है, तो फिर इंशाल्लाह कुरान को पढ़ेंगे तो आपको लज्जत आएगी। अजीज मान, ये जो एक बुजुर्गवार का, अहले मारिफत का, एक हकीम इंसान का जुमला है, अजीम जुमला है। कुरान को वाकयन ऐसे पढ़ो जैसे कि गोया कि ये किताब अब तुम पर नाजिल हो रहा है, गोया कि तुम पे नाजिल हो रहा है। बल्कि कुरान मजीद को इस तरीके से पढ़ो, जब भी कुरान मजीद को पढ़ो, जो भी कुरान मजीद की आयत पढ़ो, उस आयत को ऐसे समझो कि खुद तुम्हारे अपने वजूद की किसी न किसी सिफत को, किसी न किसी शान को, किसी न किसी हालत को बयान कर रहा है। और वाकयन ऐसे बयान करता है कुरान। उस आयत के अंदर तामुल करो और अपने अंदर तामुल करो। आयत के अंदर तामुल करने के बाद अगर थोड़ा सा अपने ऊपर तामुल करेंगे तो खुद अपने वजूद के अंदर किसी न किसी जगह पर उस आयत को आप पाएंगे। आपके वजूद के अंदर है, खुद आपकी आपकी अपनी दास्तान है। ये सूरह अंबिया में भी नाजिल है, आयत है कुरान मजीद की सूरह अंबिया में कि ए हबीब, हमने तुम पर यह कुरान नाजिल किया है, या हमने ये जो कुरान नाजिल किया है इस कुरान के अंदर तुम लोगों का तज़किरा है, तुम लोगों का तज़किरा है। खूब, यानी क्या तुम लोगों का तज़किरा है? यानी वाकई तुम्हारा दास्तान है इस कुरान के अंदर। यानी बेउनवान इंसान, इंसान के एतबार से जितने भी इंसान के शऊनात हो सकते हैं, जितने भी इंसान के हालात हो सकते हैं, वो सारे के सारे कुरान में बयान हुए हैं। लिहाजा हम लोगों को अपनी दीद को तब्दील करना चाहिए। अगर हजरत मूसा का किस्सा हम पढ़ रहे हैं तो उस किस्से के अंदर देखें कि इंसान के वजूद के किस शान को बयान किया जा रहा है। अगर इंसान के वजूद के मुख्तलिफ शुऊनात हैं तो यहाँ पर हजरत मूसा किस शान को बयान कर रहा है, फिरौन किस शान की नुमाइंदगी कर रहा है, हामान किस शान की नुमाइंदगी कर रहा है, कारून किस शान की नुमाइंदगी कर रहा है। इन तमाम चीजों को देखें, आपके साथ मुर्तबित है, आपका किस्सा है। अलबत्ता इन चीजों का मकसद ये नहीं है कि हम उन दास्तानों का इनकार कर रहे हैं, ना, ये दास्तान बरहक है, हजरत मूसा बरहक, ये जितनी भी दास्तान है वो सारी की सारी दास्तान बरहक है। लेकिन आपको भी उनवान दास्तान नहीं सुनाया जा रहा, आपको भी उनवान इंसान सुनाया जा रहा है, इंसान के वजूद के मुख्तलिफ शुऊनात को बयान किया जा रहा है, आपको इस उनवान से सुनाया जा रहा है। लिहाजा आप इंसान के मुख्तलिफ शुऊनात की तरफ मुतवज्जे हो, अपनी तरफ तवज्जो करें। तो इंशाल्लाह कुरान मजीद को अगर इस एतबार से हमने देखा तो बहुत ही लज्जत महसूस करेंगे। बहरहाल हम लोग इंशाल्लाह इस माह मुबारक रमज़ान में कोशिश करते हैं कि कुरान मजीद के सूरह कसस, ये जो सूरह कसस है उसका इंतखाब किया है कि खुदावंद मुताल तौफीक दे, तो इस माह मुबारक रमज़ान में सूरह कसस के ज़ैल में मुख्तलिफ अराइज़ आपकी खिदमत में पेश करें। ये सूरह कसस जिसकी तकरीबन 88 आयात है और 14,041 कलमे हैं और 1,441 कलमे हैं और 5,800 हरूफ हैं। कि ये सूरह कसस के जिस सूरत का एक नाम सूरह मूसा व फिरौन है, एक नाम सूरह कसस है। इस हमारे पास जो मौजूदा तरतीब है, इस तरतीब के एतबार से 28वां सूरह कुरान का है, कि बहुत ही खूबसूरत सूरह है। जिस तरीके से दूसरे सूरह हैं, इस तरीके से ये भी नहायत खूबसूरत सूरह है। कि तकरीबन इस सूरत के अंदर बड़े पैमाने पर जो बात है वो हज़रत मूसा अला नबीना व आलही व अलैहि सलाम का किस्सा बयान हो रहा है। आपको मालूम है कि कुरान मजीद के अंदर हज़रत मूसा का किस्सा बहुत ज़्यादा नकल हुआ है। जैसे कि मैंने अभी मुकदमे में राइज भी पेश की है कि दास्तान हजरत मूसा जो कुरान में नकल है, मुख्तलिफ इंसान के जो शुऊनात हैं, मुख्तलिफ जो हालात हैं, उन तमाम मनाजिर को मुनाकिस किया जा रहा है। और खसूसियत से ये जो हम सूरह कसस की तरफ जा रहे हैं, इस सूरत के अंदर तो हजरत मूसा अला नबीना की ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा कि जो आपके और हमारे हालात के साथ, हम बैरूनी हालात, हम अंदरूनी हालात, इन तमाम हालात के साथ ज़्यादा साजगार भी रहे। खसूसियत से सूरह कसस के अंदर हजरत मूसा की ज़िंदगी का वो हिस्सा बयान किया जा रहा है कि जब फिरौन अपने औज कुदरत पर है और उसने एक ग्रोह को बिल्कुल मजलूम बनाया हुआ है, ख्वार और जलील बनाया हुआ है, यहाँ तक कि उनके बच्चों के सर काट देता है, बच्चियों को जिंदा रखता है, बच्चों को कत्ल कर देता है, यानी एक ऐसे हालात के जिन हालात के अंदर फिरौन यानी अपनी औज फिरौनियत पर है। तो कुरान मजीद भी जो यहाँ पर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जो तअबीर इस्तेमाल करता है, इन फिरौन अला फिल अर्ज, इंशाल्लाह पहुँचेंगे। तो ये जो फिरौन है, अला उलू जो किनाया है तजब्बुर से, सितमगरी से, जब्बारियत, जुल्म, सितम, डिक्टेटरशिप, यानी इस तरीके से तफव्वुक, अपने आप को बड़ा समझना, इस तरीके से फिरौन अपने औज कुदरत पर है, मजलूम बेचारा मजलूम से मजलूम तर हो रहा है, ख्वार और जलील हो रहा है, और जालिम अपने औज कुदरत पर है, जाहिरी तौर पर सब कुछ उसके पास है। ये मजलूम बेचारा इस्तेज़ाफ की हालत में है, कमजोरी की हालत में, कुछ भी नहीं है इसके पास। ऐसे आलम में खुदावंद मुताल इन मजलूमीन को इस जालिम से बचाता है। खुदा की तदबीर, किस तरीके से परवरदिगार आलम इसी जालिम को रुसवा करता है, इसी जालिम को जलील और रुसवा करता है, और हत्ता के ये जो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है, इतना बड़ा मुक्तदिर है, हर किस्म की चीजें इसके हाथ में है, खुदावंद मुताल इसी के दुश्मन को इसी की आगोश में लेकर आता है। यानी फिरौन जो अपने आप को इतना बड़ा समझता है, इसी फिरौन की इसी जब्बारियत को, इसी जुल्मों जबर को खत्म करने के लिए जो खुदावंद मुताल अपना भेजा हुआ रसूल भेजता है, वो इसी फिरौन के जेर साए पलता है। यानी ये खुद अपने हाथों से, खुद अपने हाथों से अपनी तबाही को और अपनी हलाकत को और अपनी इस जाहो हशम को खुद अपने हाथों के साथ खत्म करने का सामान मुहैया करता है। यानी खुद पालता है उसे कि जो इसको खत्म करेगा, जो इसकी हलाकत का सबब बनेगा। ये वाला हिस्सा खसूसियत से बहुत ज्यादा यहां पर नकल हुआ है कि एक जालिम जुल्म के नशे में चूर है, जुल्म की नशे में अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है, और दूसरी तरफ से मजलूम बिल्कुल पिसा हुआ है, लेकिन ऐसे आलम में भी इस मजलूम को मायूस नहीं होना चाहिए। दुरुस्त है कि मजलूम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर यही मजलूम सब्र करे तो खुदावंद मुताल की सुन्नत यह है कि उस जालिम को हलाक करेगा, जलील करेगा, रुसवा करेगा, और इसी मजलूम को उस जालिम की जगह पर लेकर आएगा। इस मजलूम को उसका वारिस बनाएगा, उस जालिम को तबाह करेगा, उस मजलूम को उस तख्त पर लेकर आएगा कि जिस तख्त पर वो जालिम बैठा हुआ था, इन पर जुल्म कर रहा था। ये हजरत मूसा की जिंदगी का हिस्सा इस सूरह कसस के अंदर बयान होता है। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर एक जालिम अपने जुल्म की इंतहा तक पहुंचा हुआ है, मजलूम बिल्कुल मजलूमियत की चक्की में पिस रहा है, तो ऐसे आलम में खुदावंद मुताल की सुन्नत क्या होती है, इस नुक्ते को इस सूरत के अंदर बयान किया जा रहा है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि इसका ताल्लुक खुद हमारे मौजूदा हालात के साथ है या नहीं है। यानी बैरूनी दुनिया के अंदर भी आजकल यही हालात आपको नजर आएंगे, और खुद आप अपने दरून में जाए, अपने अंदर में जाए, वहां पर भी आपको ये दास्तान नजर आएगी, ये किस्सा नजर आएगा। तो बहरहाल आज वक्त तमाम हुआ, इंशाल्लाह इसी सूरह कसस को बिना बनाकर आहिस्ता आहिस्ता हम कल से बाकायदा सूरह कसस में वारिद हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।